नमो अरहंता नमो सिद्धा नमो आयुर्याण नमो वज्रायण नमो नो सर्वसाहूण एषु पञ्च नमो यारो सर्वपावपणाशनो मङ्गलाणं च सर्वैषिं परमं हवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरहन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवल पन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारिलुगुत्तमा अरहन्तलुगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलपन्नतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलपन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि परम पूज्य देवाधिदेव भगवान शांतिनाथ जी की जय। जिनवाणी माता की आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की पंच महागुरु भक्ति का उत्सर्ग करूंगा। मणिणाइन्द्रसूर्यधैर्यच्छत्रया पञ्चकल्याणसुखावलीपत्रया दंशनन्नाणझाणम् अनन्तं बलम् तीक्ष्णादिन्तुं हंवरं मङ्गलम् जेहि झाणग्गिबाणी ऐथद्वयम् जम्मजर मरणनय रक्तयं दद्धयम् ीपत्तंशिवं शासयं स्थाणयम् श्रीमहन्तिं सुसिद्धावरण्णाणयम् पंचाचार पंचदिशंसाहया बारसंगाई सुजलियवगाहया मुखलक्षी महंती महंते सया सूरिणो विन्ति मुखं गया संगया घोर संसार धीमा दवी कारणे सिख वीरालन पाव पंचाणि नष्टम गण जीवान सह दिशया वंदे मोक्षे सुवैच्छाय अम्मेशया उग्रतव चरण करणे जीनंगया धम्मवर छाण सुख निभरंतव श्री से समालिंगया आहवो ते महं मुख पह मग्या तीन थो तीन जो पंच गुरु वंदे तीन छो तीन जो पंच गुरु वंदे गुरु संसार धन लहै सो सिद्धि सो खाई परमाणनम गुणैकं बिन्धनं पुञ्जपज्जालनम् अरुहा सिद्धायिरिया उवज्जाया साहु पंच परमेथी हे आणनमुक्कारा भवे भवे मम सुहन्दिति इच्छामि हन्ते पंच महागुरुवत्ति कौस्तभोकौ कस्सालोके अष्टमापाणिः संयुक्तानाम् अर्हन्तानाम् अष्टगुण सम्पन्नानाम् उद्दलोय मत्तयम् वैख्यानाम् सिद्धानाम् अट्टपवेणमौ संयुक्तानाम् आयरियानाम् आयाराधिसुति नाणोपदेशयान उवध्यायान तिरियण गुण पालनयान सवसाऊन मिच्छकान अच्छेनी पूजेनी वंदामी नमिसामी सुखको तमको बोहिलाहो गैगमण समाहिमरण जीवन संपत्ति हो मजे जीव मजीवन दब्बम जिनवर वसहीन जीन निदित्थम देविंद विंद वंदम वंदे तन सव्यदा सिरसा द्रव्य संग्रह प्राकृत भाषा में द्रव्य संग्रह के रचनाकार आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती इनसे भिन्न है, जिन्होंने गुम्मटसार आदि ग्रंथों की रचना की, त्रिलोकसार, लब्धिसार, क्षपणासार, वे आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हुए और वे चामुंड राय से संबंधित रहे हैं। चामुंड राय उनको गुरु मानते थे और गोमटेश्वर बाहुबली जी की प्रतिष्ठा में उन्हीं द्वारा सूर्य मंत्र प्रदत्त किया गया था, तो वे इनसे भिन्न है। द्रव्य संग्रह के रचयिता आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव है, सिद्धांत चक्रवर्ती भिन्न है, सिद्धांती देव भिन्न है, नेमिचंद्र नाम दोनों के हैं। मंगलाचरण में आचार्य कहते हैं कि तन सर्वदा सिरसा वंदे देवेंद्र बिंद बंधु, उन देवेंद्रों के समूह द्वारा वंद्य अर्थात वंदनीय जिनेंद्र भगवान को मैं सर्वदा सदैव सिरसा वंदे अपने सिर से वंदन करता हूं। किन जिनेंद्र भगवान को? तो जिनवरों में श्रेष्ठ जिन्होंने जीवम अजीवम दव्यम निर्दिष्टम, जीव और अजीव दोनों प्रकार के द्रव्य का निर्देश किया, निरूपण किया, उपदेश किया, अर्थात जिन जिनेंद्र प्रभु ने जीव और अजीव द्रव्यों का उपदेश दिया उनको मैं हमेशा नमस्कार करता हूँ, मस्तक से उनका वंदन करता हूँ। कैसे हैं वे जिनेंद्र? तो देवेंद्रों के समूह द्वारा वंदनीय है। जीवो उवहोगमौ अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्व सिद्धोषु विश्वतो विश्वदेह। जीव जीवति इति जीव, जो जीवित रहता है उसको जीव कहते हैं। एक पर्याय की अपेक्षा तो मर सकता है लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से जीव मरण रहते सदैव जीवित रहता। उपभोगम चैतन्य स्वरूप ही है अर्थात इसमें ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना दो प्रकार की चेतना हमेशा पाई जाती है। अमूर्तिक यह अमूर्तिक है अर्थात इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण का अभाव है। कर्ता ये जीव करता है, कर्ता अर्थात रचयिता निर्माता, तो ये अपने परिणामों का अपने पर्यायों का कर्ता होता है। सदैव परिमाणु इसकी आकृति जिस शरीर को जीव ने धारण किया है उसके बराबर होती है। स्वदेह परिमाण फिर भोक्ता भी होता है, अपने ही सुख दुख आदि का ये जीव भोक्ता होता है, संसार में भी स्थित होता है और सिद्ध हो और सिद्ध भी होता है। यानी जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त, और स्वविश्वस उद्योगी, और जो सिद्ध भगवान होते हैं वो स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करने वाले होते हैं, यानी यहां से मुक्ति मिली तो अपने आप ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अब जीव शब्द का विस्तार है। सिक्काले चरपाण इंद्रिय बल माऊ आण पाणु व्यवहारा सुजीव निश्चयण दुस्थिरणा जस, व्यवहार की अपेक्षा और निश्चय की अपेक्षा जीव कौन है? आचार्य कहते हैं कि तीनों कालों में जो चार प्राणों को धारण करे सुव्यवहार से जीव है। चार प्राण कौन से? इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और श्वासोच्छ्वास। इन चार प्राणों को धारण करने वाला जीव होता है व्यवहार से, और निश्चय से जिस पदार्थ में चेतना पाई जाती है वो जीव होता है। फिर जीव उपयोगमय है, चैतन्य स्वरूपी है, तो उसका खुलासा कर रहे हैं। उग ओगु दुवी अपो दंसन नाणं च दंसन च दुधा चक्कु अचक्कु ही दंशन मद केवलं नियम। उपयोग के दो भेद हैं, दर्शन उपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शन उपयोग के चार भेद हैं, चक्षुर दर्शन, अचक्षुर दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। नान अठवी ज्ञानोपयोग के आठ विकल्प हैं, आठ भेद हैं। मधिशुद ओ ही अनान नाणी मणपजय केवल मवि पच्चक परोक भेयंज। ज्ञान आठ प्रकार के, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कदावधि, विभंगावधि, छह हो गए। फिर मन पर्याय और केवल ज्ञान। फिर इन ज्ञानों के दो विभाग हो जाते हैं, इनमें से मति और श्रुत, परोक्ष और शेष प्रत्यक्ष। फिर प्रत्यक्ष में भी केवल ज्ञान, सकल प्रत्यक्ष, अवधि मन परय ज्ञान, विकल प्रत्यक्ष होते हैं। उपयोग ही जीव की पहचान है। उपयोग शब्द का अर्थ यहाँ पर चेतना का परिणमन है। यहाँ पर उपयोग का अर्थ जो व्यावहारिक जगत में उपयोग होता है वो नहीं। मैंने तुम्हारे पेन का उपयोग किया था, वहां पर उपयोग शब्द का अर्थ क्या हुआ? इस्तेमाल, यूज। लेकिन यहाँ पर उपयोग शब्द का अर्थ है चेतना। चेतना का परिणमन उपयोग है। आत्मनिश्चैतन्यानुविधायी परिणामो उपयोग है। सर्वार्थ सिद्धि में उपयोग शब्द की परिभाषा दी है कि आत्मा का चेतना का अनुसरण करने वाला जो परिणाम है, भाव है, वो उपयोग है। यानी जानने रूप जो परिणाम है या देखने रूप जो आत्मा का परिणमन है, भाव, उसको उपयोग कहते हैं। अठ चुना अणदंशन सामण्यं जीव लक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धण्या शुद्धं पुणदंशन नाणम। आठ ज्ञान और चार दर्शन, ये सामान्य से जीव के लक्षण कहे गए हैं। व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कहे गए। आठ ज्ञान कौन से? पांच सम्यक ज्ञान, तीन मिथ्या ज्ञान, हो गए आठ। और चार दर्शन है, दर्शन सम्यक या मिथ्या नहीं होते। देखने रूप जो दर्शन होते वो सम्यक और मिथ्या नहीं होते। सद्धान रूप जो दर्शन है वो सम्यक और मिथ्या दर्शन दोनों प्रकार के हो सकते हैं, और मिश्र भी होते हैं वो परिणाम श्रद्धा वाले। तो व्यवहार से ये आठ ज्ञान और चार दर्शन अर्थात बारह प्रकार का उपयोग जीव का लक्षण है। और शुद्ध नय की अपेक्षा शुद्धम पुण दर्शनम नान, शुद्ध दर्शन और ज्ञान ही जीव का लक्षण है। अब यहाँ शुद्ध का तात्पर्य है कि जो पर निरपेक्ष दृष्टि से ग्रहण किया गया है, अर्थात इसमें किस आवरण का क्षयोपशम है या क्षय है, इस पर ध्यान न दिया जाए। सिर्फ जानन 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 जो परिणति होती है आत्मा में, जानने 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 रूप, देखने 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 रूप, वो जो शुद्ध जानना और देखना है वो निश्चय से जीव की पहचान है, जीव का लक्षण है। अब चाहे मति ज्ञान देख लो, चाहे श्रुति ज्ञान देख लो, सब में जानन 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 एक सा रहता है। प्रक्रिया भले अलग हो लेकिन जानने की क्रिया जो होती है ज्ञान है, जानने की क्रिया है इसलिए ज्ञान है। तो वो जो जानन क्रिया है, ज्ञेयतिक क्रिया जिसको कहा, वो सभी ज्ञानों में एक जैसी है। ये बात अलग है कि सापेक्ष वर्णन करें तो फिर कोई परोक्ष है, कोई प्रत्यक्ष है, कोई क्षायोपशमिक है और कोई क्षायिक है। वर्ण रस पंच गंधा दो भाषा अठनिक्षया जीवे नो संति अमुक्ति तदु व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। वर्ण रस पांच पांच, पांच वर्ण पांच रस, दो गंध आठ स्पर्श, निश्चय से जीव के नहीं होते, अर्थात जीव में ये गुण नहीं होते, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप। इसलिए वह अमूर्त है। लेकिन व्यवहार से, क्योंकि कर्म पुद्गलों का इसके साथ बंधन बंधा हुआ है, उस अपेक्षा से ये मूर्त ही है। और मूर्त होने के कारण रूपिष्व अवधि, अवधि ज्ञान का विषय जो है रूपी पदार्थ में, तो संसारी जीव को अवधि ज्ञान कैसे जानता है? जीव तो अमूर्त है। पर जिस अमूर्त के साथ मूर्त बंधा हुआ हो, उसको भी उपचार से मूर्त की श्रेणी में रख करके अवधि ज्ञान का विषय स्वीकार किया जाता है। अर्थात अवधि ज्ञान मूर्तिक जीव को ग्रहण कर सकता है, संसारी जीव को जान सकता है। अमूर्त को नहीं जानेगा, लेकिन संसारी को जान सकता है। और कई कथाओं में पढ़ा भी है, अपन सुना भी है कि अवधि ज्ञान से मुनिराज ने बता दिया कि हे धन्य कुमार, तुम उस जन्म में अकृत पुण्य थे और फिर ऐसे ऐसे कर्मों का फल तुम्हें भोगना पड़ा। ये कैसे जाना उन्होंने? क्योंकि वो संसारी थे धन्य कुमार। इसलिए संसार अवस्था में जीव का संबंध कर्म और शरीर के साथ होता है, तो उसको अवधि ज्ञान जान लेता है। और बता सकते फिर जीव करता है गल कम्मादि कत्ता व्यवहार रूणि छेदो सीधन कम्माणादा सुदृणया शुद्ध भावाणि। व्यवहार की अपेक्षा से जीव ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कर्मों को करने वाला होता है। अपने कर्मों को जीव ही तो करता है, और निश्चय से उन कर्मों की रचना कार्मण वर्गणा के परमाणुओं से होती है। जीव उन कर्मों के परमाणुओं की रचना नहीं करता, जीव केवल अपने भावों के माध्यम से उन कार्मण वर्गणाओं के कर्म रूप परिणमन में निमित्त होता है। वो परमाणुओं को बनाता नहीं है, क्योंकि जीव उद्गल का निर्माण कैसे कर सकता है? परमाणुओं की अपनी अपनी पर्याय प्रकट होती है, कार्मण वर्गणा रूप पर्याय होती है, फिर जीव के परिणामों के निमित्त से वो कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमन कर जाती है, तो उसमें निमित्त होता है। पर चूंकि व्यवहार ने उस निमित्त को भी कर्ता स्वीकार कर लेता है, जैसे रोटी किसने बनाई, तो कोई नहीं कहता कि आटा ने बनाई, मेरी माँ ने बनाई। ये व्यवहार नय का कथन है। पर निश्चय क्या कहेगा? रोटी आटे ने बनाई। और जीव निश्चय से किसका करता है? चेतन कम्माणादा, अपने चेतन कर्मों का कर्ता जीव है। अर्थात चेतन कर्म किसको कहेंगे? कि राग द्वेष सुख दुख ये जो होते हैं, ये चेतन कर्म है, तो इन कर्मों का आत्मा करता है। वैसे समयसार ग्रंथ की टीका में इनको अचेतन भी नहीं कहा और चेतन भी नहीं कहा, चिदाभास कहा। अचेतन इसलिए नहीं कहा क्योंकि कभी भी किसी पुद्गल द्रव्य में राग द्वेष नहीं देखेंगे आप। कभी देखा आपने कि पेंसिल नाराज हो गई हो किसी से? नहीं, क्योंकि पुद्गल द्रव्य में राग द्वेष होते नहीं, राग द्वेष जीव में होते हैं। तो जीव उन राग द्वेष का कर्ता होता है निश्चय। और शुद्ध नय से, शुद्ध नय किसी अशुद्धि पर दृष्टि ही नहीं डालता। तो जीव है, संसारी है या मुक्त है, उसके अंदर जो ज्ञान दर्शन चालू है, बस उन परिणामों का करता है जीव, शुद्ध भावों का। फिर भोक्ता व्यवहार सुख दुःखम उद्गलकम फलम पभुंजेति आदानि क्षेणेषु छेदन भावं को आदस। व्यवहार ने से उद्गल कर्म के फल स्वरूप होने वाले सुख और दुख का जीव भोगता है, और निश्चय ने से अपने चेतन भावों का भोगता है। व्यवहार से ही कहेंगे कि जैसे किसी के पुण्य का उदय आ गया और उसको खूब धन संपदा और सुख सुविधाएं मिल गई, तो उन सब पदार्थों का भोक्ता जीव हो गया व्यवहार से। पर वास्तव में निश्चय से देखा जाए तो फिर किसी पदार्थ का भोग अपनी आत्मा नहीं करती, केवल उस पदार्थ को इंद्रियों का विषय बनाकर अपने ज्ञान में उस वस्तु की जानकारी आत्मा को होती है। वो वस्तु भी ज्ञान के अंदर प्रवेश नहीं करती, वस्तु अपने स्थान पर है, ज्ञान अपने स्थान पर है, पर ज्ञान में ऐसा एक निर्मल स्वभाव होता है कि ज्ञान किसी अन्य पदार्थों के गुणधर्मों को जान लेता है। तो किसी भी इंद्रिय सुख संबंधी कोई विषय को या कोई इष्ट पदार्थ को जीव ने अपनी इंद्रियों का विषय बनाया तो उससे क्या हुआ कि वो पदार्थ आत्मा में समाविष्ट नहीं हुआ। लड्डू खाया किसी ने तो क्या लड्डू आत्मा में समा गया? नहीं, वो आत्मसात नहीं होती कोई भी वस्तु। अब लड्डू खाने वाले का लड्डू ऑपरेशन करके दूसरी अवस्था में बाहर निकल सकता है क्योंकि वो लड्डू उसकी आत्मा में समाविष्ट नहीं हुआ है। तो फिर जीव किसका भोगता है? व्यवहार से तो कहा कि उसने लड्डू का भोग किया, खूब मस्त खाया, उसने आनंद उठा लिया। तो आनंद लड्डू से नहीं प्राप्त हुआ, लड्डू में जो मिठास है अथवा जो भी मगध आदि जो भी वस्तुओं का स्वाद है, इलायची वगैरह का, उस स्वाद का जीव को ज्ञान हुआ है। और ज्ञान होने के बाद राग के कारण उसने जो इष्ट बुद्धि की थी उन वस्तुओं के प्रति, उस इष्ट बुद्धि के कारण जो उसको हर्ष हुआ है, जीव उस हर्ष का और राग का भोगता होता है, पर वस्तु का भोगता नहीं। पर वो हर्ष और वो राग पर वस्तु के निमित्त से होता है। तो जिसके निमित्त से वो राग और हर्ष हो रहा है उस वस्तु को भी उसमें समाविष्ट करके व्यवहार नहीं कहता है कि इसको भोगा है, इसको नहीं भोगा, इसके निमित्त से जो अंदर घटना हुई थी उसको भोगा है। समझ में आया? लड्डू को खाया तो लड्डू का क्या हुआ? क्या उसके परमाणु आत्मा में चेतन रूप बन करके बदल गए, पुद्गल द्रव्य मिट गया क्या? नहीं, वो लड्डू जो था वो पुद्गल द्रव्य है और अभी भी है, बस उसका स्थानांतरण, स्थानांतरण यानी हाथ से अंदर स्थान बदल गया और रूपांतरण हुआ है। जो पहले आकार था, जो रंग था और जो उसमें चिकनाई आदि जो भी गुणधर्म थे वो अब बदल करके मुख में चरवण के बाद और शरीर के भीतर के रसों के साथ मिश्रित होकर एक दूसरे रूप में अवस्थित हो गए। तो किसी भी पर वस्तु का भोग निश्चय से जीव नहीं करता, व्यवहार से तो चूंकि उस वस्तु के निमित्त से जीव के अंदर राग द्वेष हर्ष विषाद होते हैं और उन राग द्वेष और हर्ष विषाद का तो जीव भोग करता ही है, तो चूंकि वो वस्तु निमित्त बन गई इसलिए उस वस्तु का भोगता व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय से जीव अपने ही हर्ष विषाद का भोगता होता है, अपने ही भावों को भोगता है। फिर वो ऑपरेशन वाली जो बात हमने की आपके सामने, उससे ये बात और खुल करके दृष्टांत रूप में समझ में आ जाती है कि वो चीज मेरे अंदर समा नहीं गई है, सिर्फ रूप बदल करके स्थानांतरित हुई है। मैं उसका भोगता नहीं हूं, उसके कारण होने वाले जो मेरे अंदर के भाव है, हर्ष विषाद, अगर लड्डू के अंदर कंकड़ निकल जाए तो फिर उसका भोगता हुआ किसका? उस कंकड़ से निमित्त, कंकड़ के निमित्त से होने वाले देश का, उसका भोगता होता। फिर जीव के आकार की चर्चा है, अणगुणु देह परमाणु उपसंहार पसपदो चेता असमुदो व्यवहारा निश्चय ने दूर असंकदेशुवा। आचार्य कहते हैं कि छोटे या बड़े शरीर के आकृति को जीव धारण करके अपने ही संकोच विस्तार स्वभाव के कारण जिस शरीर में जीव है उस आकार को धारण कर लेता है। यदि समुद्घात की अवस्था न हो तो, क्योंकि समुद्घात में क्या होता है कि जीव शरीर को नहीं छोड़ता लेकिन जीव के प्रदेश कुछ विस्तृत हो जाते हैं। तो केवली समुद्घात के अंतर्गत जो लोकपूर्ण नामक स्थान है वहां तो समूचे लोक में जीव के प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं। ये भी व्यवहार से, निश्चय से तो जीव के जो असंख्यात प्रदेश है बस जीव उसके बराबर है। अब वो असंख्यात प्रदेश अगर बड़े फैल जाए तो भी जीव उसके ही बराबर है और शरीर में समा जाए तो भी जीव उसके ही बराबर है। जीव अपने प्रदेशों के प्रमाण है। फिर संसारी जीव की बात आती है, उड़विजलते उवाऊ वनपदे विविधावरे हिंदी विगते चतुपंचखा तस जीवा होंति संखादी। आचार्य कहते हैं कि पृथ्वी जल तेज अर्थात अग्निकाय और वायु और वनस्पति ये विविध प्रकार के स्थावर हैं और एक इंद्रिय वाले जीव हैं और दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय वाले त्रस जीव कहलाते हैं और त्रस जीवों में शंख आदि द्विंद्रिय है चीटी आदि त्रिइंद्रिय है मच्छर मक्खी आदि चतुर इंद्रिय है और हाथी घोड़ा मनुष्य देव नारक आदि पंचेंद्रिय है। 14 जीव समास होते हैं त्रस स्थावरों की मिलाकर के, जैसे 14 मार्गणाएं आपने पढ़ी थी 14 गुणस्थान पढ़े थे वैसे ये 14 जीव समास भी है। 19 जीव समास का वर्णन अलग है गोमतसार जीव कांड में, यहाँ पर 14 जीव समासों का वर्णन। समणा अमणा नेया पंचिंद्रिय निम्मणा परे सव्वे बादर सुमेन्दी सव्वे पज्जत इदराय। सैनी असैनी पंचेंद्रिय ये दो फिर बादर और सूक्ष्म एकेंद्रिय ये दो दो और दो चार हो गए फिर द्विंद्रिय त्रिइंद्रिय चतुरिंद्रिय ये तीन तो 4 और 3 7 हो गए। अब ये 7 अपर्याप्तक भी होते हैं और पर्याप्तक भी होते हैं तो 7 पर्याप्तक और 7 अपर्याप्तक 14 जीव समास हो गए। मग्गण गुण ठाणी ही 14 संहवंतित असुद्धनया विण्णीय संसारी सव्वे शुद्धा सुद्धनया। मार्गणा और गुणस्थानों की अपेक्षा 14 मार्गणा है 14 गुणस्थान है इनकी अपेक्षा अशुद्ध नया संसारी विन्नया अशुद्ध नय की अपेक्षा संसारियों को जाना जा सकता है अर्थात मार्गणों और गुणस्थानों की अपेक्षा 14 मार्गणा 14 गुणस्थानों की अपेक्षा जीवों का विस्तार अशुद्ध नय से जाना जाता है और शुद्ध नय से सवे शुद्धा हु सभी जीव शुद्ध ही हैं शुद्ध नय से क्योंकि शुद्ध नय संयोग को अस्वीकार करता है केवल एक को पकड़ता है और एक को पकड़ो तो फिर कोई अशुद्धि का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां मिश्रण होता है वहां अशुद्धि होती है जहां एक को ग्रहण किया जाता है वहां एक को ग्रहण करने में कोई अशुद्धि होती थी। जैसे फल है इसका दृष्टांत हम इस प्रकार से देते आए बहुत समय से दे रहे हैं फल है फिर वृक्ष है उसकी टहनियां हैं सब्जियां हैं सरोवर है कुआ है इन सब में वैज्ञानिक दृष्टि से जो जल है उसका क्या सूत्र है क्या फॉर्मूला है जल को क्या बोलेंगे वैज्ञानिक भाषा में H2O तो ये शुद्ध नय इसको कहते हैं। वो जल कहीं का भी हो कहीं पर भी हो पर जल बराबर H2O उसी प्रकार जीव चाहे संसारी हो चाहे मोक्ष में हो त्रस हो स्थावर हो एकेंद्रीय हो कहीं भी कैसा भी क्यों ना हो जीव सो जीव शुद्ध नय से सब शुद्ध है पर अशुद्ध नय से तालाब का पानी अलग है सागर का पानी अलग है नदी का पानी अलग है कंकरिया का अलग है साबरमती का अलग है बावड़ी का अलग है और फिर यहाँ मंदिर के नीचे जो कुआं है वहां का अलग है नल का अलग है सब अलग अलग है पानी फलों का पानी अलग है नारियल का पानी अलग है ओस में गिरने वाला पानी अलग है बरसात का पानी अलग है सब अलग अलग है लेकिन निश्चय से देखा जाए तो पानी सो पानी H2O। इसी प्रकार जीव कहीं भी किसी भी पर्याय में कैसी भी दशा में क्यों न हो, जीव सो जीव, शुद्ध नये से सब जीव एक समान है। नियमसार ग्रंथ में भी आचार्य कुनकुन स्वामी लिखा है, सबवे सिद्ध समाना शुद्ध नया संसिधि जीव, सभी संसारी जीव शुद्ध नये की अपेक्षा सिद्ध भगवान के समान है। क्योंकि शुद्ध नये ये पर्याय जनित अशुद्धि को और कर्म संयोग या नोकर्म संयोग से होने वाली भिन्नता को ग्रहण ही नहीं करता, वो केवल चेतन स्वरूप त्रिकाली ध्रुव उस आत्मा को उस जीव को ही ग्रहण करता है। तो अब उसमें क्या फर्क निकालेंगे, सब सिद्ध समान ही मिलेंगे आप उस अपेक्षा से। पर ये सारे नए वस्तु को समझने के उपाय हैं। इसमें अपन राग द्वेष के कारण ये नए मुझे पसंद है और वो मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं तो यही पकड़ कर चलूंगा, ये आपका फैसला हो सकता है। लेकिन आत्मकल्याण का मार्ग एक नए को पकड़ कर चलना नहीं है, दोनों नए के माध्यम से वस्तु का स्वरूप समझकर फिर अपना क्या कर्तव्य बनता है इस पर विचार करके कर्तव्य कर लेना, ये कल्याण का मार्ग है। अब निश्चय से आत्मा का स्वरूप बड़ा सुंदर लगता है, निश्चय से सभी आत्माएं परमात्मा स्वरूप है, पर वास्तव में परमात्मा कौन है, भगवान में और अपने में क्या अंतर है? भगवान निश्चय और व्यवहार दोनों से परमात्मा है, अपन निश्चय से परमात्मा है, व्यवहार से संसार संसारी आत्मा है, इतना अंतर है दोनों। उनका रूप और स्वरूप परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा रूप है, अपना रूप संसारी रूप है, स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। माने अंतरंग में वो शक्ति रूप में तो है सारी चीजें, वो देखो बट का जो बीज होता है उसमें कितनी शक्ति होती है, पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है कि सारी धरती को व्याप्त करने की शक्ति होती है एक बड़ के बीज में। कितना छोटा होता है वो, खसखस के दाने के बराबर, देखा आपने खसखस का दाना, गर्मियों में खूब ठंडा है पीते हैं, तो जो खसखस का दाना है वो कितना छोटा सा है, उतना छोटा सा ये बड़ का बीज होता है। लेकिन जब वो अंकुरित होकर के बड़े विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है और वृक्ष में से जो एरियल रूट्स निकलते हैं, ऊपर से जो जटाएं निकलती है, वो अगर जमीन में चली जाए तो वहां एक नया वृक्ष बन जाता है और फैलते फैलते जैसे कोलकाता में एक डेढ़ किलोमीटर तक फैला हुआ वृक्ष, वट वृक्ष, अभी है या नहीं पता नहीं लेकिन बहुत पहले वो बड़ा प्रसिद्ध चर्चित वृक्ष रहा है, होगा। और फिर एक और स्थान है, भोपाल से नेमावर जाते समय रास्ते में एक स्थान मिलता है, वहां पर भी एक विशाल वट का वृक्ष, पूरा संघ उसके नीचे सामायिक करने बैठा था, एक ही पेड़ था वो। और आचार्य श्री का संघ कितना बड़ा है आपको पता है, लेकिन वो इतना बड़ा वृक्ष था कि सारा संघ उस वृक्ष के नीचे सामायिक करने बैठा रहा। तो जिस प्रकार एक बट के बीज में इतनी शक्ति होती है कि सारी धरती को व्याप्त कर ले, बस उसी प्रकार सब जीवों के अंदर अपार शक्तियां भरी हुई हैं, बस वो शक्ति प्रकट न होने के कारण वो बीज इधर उधर संसार में इस मिट्टी में पड़े हुए हैं, चार गतियों की मिट्टी में। आज अपन भी वैसे बीज के रूप में यहाँ पर चारों गतियों में, इस समय आप जैसे अभी आप लोग तो मनुष्य गति में हैं और कुछ अभी बाहर जो आवाजें आ रही थी तिरंज गति के पक्षियों की थी, कभी नीचे से आती है पशुओं की, तो ये सब अलग अलग गतियों के जीव हैं, लेकिन बीज जो है वो वही बीज है। सबले शुद्धा शुद्ध है, शुद्ध नए सभी शुद्ध। फिर सिद्ध परमेष्ठी की बात आती है, निकम्म अट्ट गुणा किंचूणा चरम देह दू सिद्धा लोय गठिदा निचा उत्पाद वही संयुक्ता। कर्म रहित जो आत्मा है, अष्ट गुण सहित जो आत्मा है, अंतिम शरीर से कुछ कम आकृति वाले जो जीव हैं, और लोक के अग्रभार भाग पर जो अवस्थित हो गए हैं, जो शाश्वत स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, वो सिद्ध परमेष्ठी हैं। लेकिन वो भी उत्पाद व्यय से संयुक्त है, उनमें भी कुछ परिणमन तो चालू रहता है, कुछ हानि वृद्धि होती रहती है। अजीवो पुण्य उपकल धम्मो अधम्मायासं कालो पुगल मुक्तो रूवादिगुणो अमुत्से साधु। अजीव के पांच भेद हैं, उसमें सुदगल धर्म अधर्म आकाश और काल, इन पांच द्रव्यों को अजीव माना गया है, क्योंकि इन पांच द्रव्यों में चेतना नहीं होती, ये अचेतन होते हैं, जानने देखने में असमर्थ होते हैं। फिर आप कहेंगे कि हमारा कंप्यूटर तो बहुत कुछ जानता देखता है, तो वो क्या है, ये आदमी के दिमाग से उसको वैसा प्रोग्राम किया गया है, इसलिए वो सारे काम कर लेता है जैसा आपने उसमें फील करके रखा है। कंप्यूटर से आप अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछो जो उसकी मेमोरी में नहीं है, या जो उसके हार्ड डिस्क में प्रोग्रामिंग के तहत नहीं डाला गया है, तो कुछ नहीं कर सकता। भूकंप आ जाए तो कंप्यूटर भाग कर इधर उधर नहीं जाता बचने के लिए, कंप्यूटर को डर नहीं लगता, कंप्यूटर नाराजी बताता है कभी कभी, उसमें ऐसी प्रोग्रामिंग कर दो तो फिर वो नाराज भी होता है कभी कभी, लेकिन कंप्यूटर अचेतन है। तो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये पांच अजीब द्रव्य हैं। अब इन अजीब द्रव्यों में चार तो अमूर्त है और एक मूर्त है। अमूर्त का अर्थ स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित, और मूर्त का अर्थ होता है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। तो पुद्गल द्रव्य मूर्त है, शेष अमूर्त। मूर्त को ही रूपी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपी। रूपेण पुद्गलाः, तत्वार्थ सूत्र के उसमें सूत्र आया पांचवें अध्याय में। फिर पुद्गल द्रव्यों की अलग अलग पर्याय होती है, शब्दो बंदो सुमू तूलो संथान भेद तम छाया उज्जोदादव सहिया पुग्गल पज्जाया। शब्द यानी ध्वनि, ध्वनि पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। बंध, बंद अवस्था जो होती है परमाणुओं में, वो भी पुद्गल की पर्याय है। सूक्ष्म, सूक्ष्मता स्थूलता, संस्थान यानी आकृतियां, भेद यानी टुकड़े, तम यानी अंधकार, छाया यानी छांव या प्रतिबिंब, उद्योत यानी जो प्रकाश आंखों को पीड़ा नहीं पहुंचाता, आतप जो प्रकाश आंखों को पीड़ित करता है, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। धर्म द्रव्य क्या है? गई परिणयान धम्म उगल जीवाण गमन सहयारी तो मच्छाण छंदाणी सुनी। गति रूप परिणत यानी गमन करने वाले जीव और पुद्गल, दो ही पदार्थ ऐसे हैं जो स्थानांतरित होते हैं। बाकी आकाश काल धर्म और अधर्म ये शेष चार द्रव्य हमेशा स्थिर रहते हैं, ये हिलते डुलते नहीं है। जीव और पुद्गल में ही हलचली होती है, तो इनकी हलचली में इनकी गति में जो सहायक है वो धर्म द्रव्य है। जैसे मछली के लिए जल सहायक होता है, लेकिन जल जबरदस्ती मछली को तैराता नहीं है, मछली तैरे तो तैरने में सहायता पहुंचाता है। इसी प्रकार धर्म द्रव्य भी जीव और पुद्गल को जबरदस्ती गतिमान नहीं करता, जीव पुद्गल गतिमंत हो तो धर्म द्रव्य सहायक होता है। ठाण जुदाण अधम्म उगल जीवाण ठाण सहयारी छाया जह पहियाण गच्छन्ताणि विसूनी धरई। फिर जो स्थिर रहने वाले जीव और पुद्गल हैं, उनकी स्थिरता में सहायक अधर्म द्रव्य है, लेकिन चलने वालों को जबरदस्ती स्थिर नहीं करता अधर्म द्रव्य। जैसे जीव चलना चाहे तो फिर अधर्म द्रव्य उसको रोकेगा नहीं, जीव रुके तो फिर अधर्म द्रव्य उसके रुकने में सहायक होगा। जिस प्रकार वृक्ष की छांव अगर कोई विश्राम करना चाहता हो तो उसके लिए सहायक होती है, न करना चाहे तो जबरदस्ती उसको पकड़कर विश्राम नहीं कराती। अवगास दान जुगन जीवा दीनम व्याणायासम जीनम लोगागासम अल्लोगागासम इदुविहम। जो स्थान प्रदान करने योग्य द्रव्य है, सब द्रव्यों को जगह देने वाला द्रव्य है, जीव आदि जितने द्रव्य हैं सबको जो अवकाश प्रदान करता है उसका नाम है आकाश। और जिनेंद्र भगवान ने उसके दो भेद किए हैं। जिस आकाश के हिस्से में सभी द्रव्य मौजूद हो, देखे जाए, उसको लोक कहा। और जहां पांच द्रव्य न होकर केवल एक आकाश द्रव्य ही हो वह अलोक कहलाता है। इस तरह आकाश के दो भेद हो गए, लोकाकाश और अलोकाकाश। धम्मा धम्मा कालो कुग्गल जीवाय संत जावदिये आयासे सोलोगु तत्तो पर दो अलोभुक्ति। धर्म अधर्म काल कुग्गल और जीव, ये आकाश के जिस भाग में होते हैं उस भाग को लोकाकाश कहते हैं, और उसके आगे वाला यानी उससे रहित पंच द्रव्यों से रहित जो आकाश है वो अलोकाकाश। दब परियटरू जूसो कालो हवे व्यवहारो परिणाम आदि लखो वक्षण लखो ये परमत्व। द्रव्यों के परिवर्तन रूप जो निमित्त भूत द्रव्य है वो काल द्रव्य है। व्यवहार से वर्तन परिणाम लक्षण है, परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व ये काल का लक्षण व्यवहार से है, और निश्चय से वर्तना लक्षण है, होना 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 होना। प्रत्येक द्रव्य प्रति समय होते हैं होते हैं होते हैं, ये काल का उपकार है। लोयाया सुपदेशी इक्के जेठिया हुई किक्का रैणानन राशि में ते कालाणु असंख दवाणी। लोकाकाश के प्रदेशों पर एक एक प्रदेश पर ये काल द्रव्य जो कि अपने आप में असंख्यात है, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने काल द्रव्य हैं। तो वे सारे काल द्रव्य रत्नों की राशि के समान, जिस प्रकार रत्नों को एक डब्बे में रख लो तो वो रत्न एक रत्न में दूसरा रत्न प्रवेश नहीं करता, अलग अलग रहते हैं, उसी प्रकार सारे लोक में जो कालाणु हैं वो आकाश के एक एक प्रदेश पर अलग अलग रहते हैं। कोई कालाणु एक दूसरे के साथ जुड़ता नहीं है, एक दूसरे में प्रवेश नहीं करता, अमूर्त है लेकिन अलग अलग रहते हैं। एक प्रदेश का कालाणु एक स्वतंत्र द्रव्य है, उसके बाजू वाले प्रदेश का कालाणु दूसरा द्रव्य है, काल द्रव्य। ऐसे असंख्यात काल द्रव्य होते हैं। एवं चब्भेयमिदं जीवा जीव प्रभेदो दद्वम उत्तम काल विजित्तम नायव्वा पंच अखिकायाधु। इस प्रकार छह प्रकार के द्रव्य हो गए, जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये छह द्रव्य हो गए। काल विजित्तम पंच अखिकाया, काल को छोड़कर जो छह द्रव्यों में से पांच द्रव्य हैं वो अस्थि काय कहलाते हैं। अस्थि यानी है और काय यानी अनेक प्रदेश वाले। कालाणु एक प्रदेश ही है क्योंकि आकाश के एक प्रदेश पर एक कालाणु होता है लोकाकाश में, लेकिन बाकी अनेक प्रदेश वाले होते हैं इसलिए अस्थि काय कहलाते हैं। अब पुद्गल का एक परमाणु अगर हो तो उसको अस्थि काय कहेंगे? नहीं कहेंगे। कैसे कहेंगे और कैसे नहीं कहेंगे, दोनों का जवाब हम चाहते हैं। जो कह रहे हैं कि नहीं कहेंगे वो बताओ कि क्यों, और जो कह रहे हैं कहेंगे उन वो बताओ क्यों। एक प्रदेश ही हुआ कौन अस्थि का है? अस्थि का एक प्रदेश ही नहीं होता, ठीक है। तो कौन काल की बात ही नहीं चल रही, परमाणु की चर्चा कर रहे हैं। हमने प्रश्न ये पूछा है कि पुद्गल का एक परमाणु अस्थिकाय है या नहीं, किस अपेक्षा से, वो अपेक्षा हम जानना चाहते हैं।
अस्थिकाय नहीं है,
वो हम आपसे पूछ रहे हैं। इसका उत्तर ये है कि पुद्गल परमाणु में अन्य परमाणु से बंध कर स्कंद पर्याय धारण करने की क्षमता होती है, इसलिए क्षमता की अपेक्षा से वो अस्तिका है। ठीक है ना, द्रव्य निक्षेप से या फिर नयों की अपेक्षा, नैगम नय की अपेक्षा से उसको अस्तिकाय कहा जा सकता है। वर्तमान एवं भूत नय की अपेक्षा से तो वो अस्तिकाय नहीं होगा, है ना, क्योंकि परिणति जो है उसकी वो एक परमाणु रूप हो रही है, लेकिन उसके अंदर क्षमता तो है। स्निग्ध रूक्ष गुण होते हैं परमाणु में, स्निग्ध रूक्ष बंध बंध होता है उससे, और बंध होने के बाद क्या होता है, वो एक प्रदेश ही नहीं रहता। ठीक है ना, असंख्य का नियम नहीं है, संख्यात असंख्यात और अनंत ये सब अस्थिकाय होते हैं। संख्यात प्रदेश अगर होंगे तो भी अस्थिकाय कहलाएगा, एक प्रदेश हो तो अस्थिकाय नहीं होगा, एवं भूत नहीं से परमाणु, लेकिन शक्ति रूप से उसके पास अनेक प्रदेश होने की क्षमता है, इसलिए अस्थिकाय है। काय अनेक प्रदेश चीयते इति काय, जिसमें प्रदेशों का संचय हो, अनेक प्रदेश है वो काय है। आज बिल्कुल सैद्धांतिक भाषा में वर्णन चल रहा है, टेक्निकल भाषा में। अच्छा, लेकिन मन लगा के सुनो, बहुत कर्म कट जाते, बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते, पुण्य का संचय भी भारी होता है। पर अभी हम उस सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं, कर्म सिद्धांत जीव सिद्धांत, अभी तो सामान्य वर्णन है। सिद्धांत में जो गुणस्थान मारणास्थान की सूक्ष्मता है उसका स्वाध्याय वर्जित होता है अष्टमी चतुर्दशी। आकाश का कौन सा शरीर है आप बताइए, क्योंकि आकाश अस्थिकाय है। अब निकालो आप शरीर का अर्थ वहां पर, शरीर देखो, शरीर शब्द जो है ना, पुद्गल द्रव्य से रचना को प्राप्त होने वाला शरीर अलग है। यहाँ पर काय शब्द का अर्थ वो पुद्गल द्रव्य से बनने वाला औदारिक आदिक शरीर नहीं है, अनेक प्रदेशी है, सीधा सीधा अर्थ। काय का अर्थ क्या है, अभी हमने व्युत्पत्ति करके बतलाई थी, संस्कृत व्याकरण से बताया, चीयते इति कायः, क्या अर्थ हुआ, जिसमें प्रदेशों का संचय हो उसको काय कहते हैं, जिसमें अनेक प्रदेश हो। प्रदेश का अर्थ क्या है, आकाश का सबसे छोटा हिस्सा, तो उतने हिस्से में जो द्रव्य समा जाए वो अस्थिकाय नहीं है, और उससे अधिक हिस्सा घेरे सो काय है। अभी स्पष्ट नहीं हुआ, स्पष्ट न होने का कारण ध्यान से न सुनना है, या फिर सुनते सुनते कुछ सोचना है। अगर आप सुनते सुनते कुछ सोचते जाएंगे तो फिर आपको जो सुनाया जा रहा है वो कभी नहीं समझ में आएगा। प्रदेश का अर्थ क्या है, सबसे छोटा भाग, उसका अन्य हिस्सा ना हो सके, सबसे छोटे स्थान को प्रदेश कहते हैं, और उस स्थान से अधिक स्थान घेरने वाले द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। स्पष्ट हो गया, एकदम सीधा सरल गणित है उसका। तो पांच अस्थिकाय हैं और एक काल द्रव्य जो है वो अस्थिकाय नहीं है, अस्थि जरूर है क्योंकि उसका अस्तित्व है ना, काल का अस्तित्व है कि नहीं। श्वेतांबर मान्यता में कुछ आचार्यों ने काल को द्रव्य स्वीकार नहीं किया, काल घड़ी घंटा आदि काल पर्याय के रूप में स्वीकार किए उन्होंने, लेकिन काल द्रव्य को स्वतंत्र उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसलिए श्वेतांबर तत्वार्थ सूत्र में पंचम अध्याय का वो जो सूत्र है कालश्च, उसका पाठ अलग दिया है, कालश्चेत्येके, ये पाठ है श्वेतांबरों में जो तत्वार्थ सूत्र है उसके पंचम अध्याय में कालश्च, ये जो सूत्र आ रहा है इसका पाठ थोड़ा भिन्न है। क्या पाठ है, कालश्चेत्येके, अर्थात कुछ आचार्य काल को भी द्रव्य मानते हैं, कुछ आचार्य, काल द्रव्य सर्वसम्मत नहीं है श्वेतांबर मान्यता में, पर दिगंबर मान्यता में आचार्य कहते हैं कि यदि तुम काल को पर्याय मानते हो, किसकी पर्याय मानते हो, ये भी बता दो, पर्याय किसकी होती है? द्रव्य की। द्रव्य को नहीं मान रहे हो तो फिर किसकी पर्याय है काल? ये दिगंबर आचार्यों की प्रतिशंका है उनके प्रति कि तुम काल को पर्याय तो मानते हो, क्योंकि स्पष्ट रूप से काल तो लोक प्रसिद्ध है। दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, माह, ये सारे तो काल के ही भेद है ना, तो इसको काल को तो मानते हैं, व्यवहार काल को, निश्चय काल को नहीं मानते, अर्थात काल द्रव्य को स्वीकार नहीं करते। तो जैनाचार्य कहते हैं, दिगंबर आचार्य, कि यदि तुम द्रव्य को स्वीकार नहीं करते तो फिर वो पर्याय किसकी होगी? क्या द्रव्य के बिना पर्याय होती है? क्या बगैर द्रव्य के पर्याय होती है? क्या हो ही नहीं सकती। मैं मनुष्य हूं, अब वो मैं चाहिए ना वहां पर, बिना मैं के क्या मनुष्य आ जाएगा? नहीं आ सकता। तो द्रव्य अनिवार्य है, इसलिए जैनाचार्यों ने, दिगंबर आचार्यों ने काल को भी छठा द्रव्य स्वीकार किया है। श्वेतांबर मत में पांच अस्थिकायों को ही पांच द्रव्य माना है, और काल उन्होंने बोला है कि काल तो व्यवहार काल है, निश्चय काल तो कोई काल द्रव्य है नहीं। उनके अनेक आचार्यों का ये मत है, तो इतना फर्क है दोनों में। संति जदो तेणी भी अथीति भणंती जिणवरा जम्मा काया इव बहुदेशा तम्मा काया अस्थिकायाय। कारण यह है, पांच को अस्थिकाय मानने का कारण क्या है, कि उन पांच में अस्तित्व भी है और कायपना भी है। कायपना यानी अनेक प्रदेश, कायपना का अर्थ होता है उनमें अनेक प्रदेश है, इसलिए वो अस्थिकाय है। जैसे बीच बीच में घड़ी पर ध्यान जाता है, अगर कोई कथा चलती तो फिर नहीं जाता। एक बार एक बहुत बड़े कवि से, गीतकार से, किसी इंटरव्यू लेने वाले ने, साक्षात्कार करने वाले ने प्रश्न पूछा कि आप कितने समय तक कविता लिखते हो। तब उन्होंने जो जवाब दिया वो भक्तों के लिए विशेष सुनने योग्य है। अद्भुत जवाब था उनका। उन्होंने उत्तर दिया कि कविता मेरी साधना और आराधना है, और आराधना को मैं कभी समय में बांध करके नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी दान और पूजा और कोई भी धार्मिक कार्य, स्वाध्याय, ध्यान वगैरह, इसको समय की सीमा में जकड़ कर चलने से वो विशुद्धि प्रकट नहीं हो सकती। देखो, एक बार एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा था कि हमारा इससे सामायिक में क्या करते हैं। हमने बताया कि सामायिक में क्या करते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि कितनी देर करते हैं। हमें आश्चर्य हो रहा था कि छोटा सा बच्चा है और क्या दिमाग चल रहा है उसका, ऐसी ऐसी शंकाएं पूछ रहा है। कितनी देर तक करते हैं? हमने बोला कि 48 मिनट। उसे बोले कि आपको टाइम का कैसे पता चलता है? समझ में आई शंका उसकी, कितनी गहरी शंका है उसकी। क्योंकि घड़ी देखकर अगर सामायिक करते तो सामायिक नहीं करते, तो घड़ी देखते हैं, और सामायिक करते तो टाइम कैसे पता चले 48 मिनट। तो हमने उसको उत्तर दिया कि इसकी प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं, कि कितने टाइम में हम कितना धर्म ध्यान कर लेते हैं इसको पहले देख लेते हैं, फिर उतना हो जाने के बाद अपने आप पता चलता है कि इतना टाइम हो चुका है। तो धर्म की आराधना में जब कोई ऐसा विषय मिल रहा है तो ठीक है, आप निश्चिंत रहो। वैसे हम आपसे नहीं कहना चाहते, आपको बुरा लग सकता है कि महाराज हमें टोक रहे हैं कि हम घड़ी देख रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये एक जानने योग्य बात है कि आराधना में वक्त की सीमा नहीं होती। आराधना तो स्वप्न में भी होती है, जागरण में भी होती है, सो चलते समय, बैठते समय, उठते समय, कभी भी कौन रोकता आपको पंच परमेष्ठी को स्मरण करने में? उनको नमस्कार करने से कौन रोक सकता है। धवल जय धवल ग्रंथ की पहली पुस्तक में लिखा है कि चलते समय, उठते समय, बैठते समय, खाते समय, पीते समय, सोते समय, हर समय अरहंत भगवान को आप भाव से नमस्कार कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। अरहंत भगवान को आप हमेशा नमस्कार कर सकते हैं। यानी अगर आपको नमस्कार पाठ करना है तो आप नहाते नहाते पाठ नहीं कर सकते, लेकिन नहाते नहाते मन में भगवान को नमस्कार करना है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। भोजन करते समय झूठे मुंह से आप नमो अरिहंताणम ऐसा बोलेंगे नहीं। अब मुंह में भजिया चबा रहे नमो अरिहंताणम बोले वो नहीं चलेगा, लेकिन अरहंत को भावों से आप नमस्कार कर सकते हैं श्रद्धा में, क्या आपत्ति है। अब वो जो शंका आपने की थी ना कि एक परमाणु काय कैसे है, तो उसका जवाब स्वयं आचार्य महाराज ने दिया। देखो कितनी सुंदर बात है कि अगर अपन धीरज रख लें तो अपनी अनेक शंकाओं के समाधान यही मिल जाएंगे, पर अधीरता इतनी रहती है कि वो पूरा सुनने के पहले ही वो जो खुलबुली मचती अंदर एकदम शंका मुंह के बाहर आ जाती है। जवाब यही लिखा है आगे, पहले तो ये लिखा उन्ति असंखा जीवे धम्मा धम्मे अनंतायासे मुत्ते तिविहपदेशा कालस्य गोय तेन सुकाओ न फेन सुकाओ। बोले असंख्यात प्रदेश जीव में होते हैं, ये काय का हिसाब बना लो ना, काय माने अनेक प्रदेश हैं जिसके, तो अनेक प्रदेश जीव के कितने हैं, असंख्यात। धर्माधर्म के कितने हैं, असंख्यात। आकाश के कितने हैं, अनंत। उद्गल के कितने हैं, तो आचार्य कहते हैं संख्यात, असंख्यात और अनंत। उद्गल के इतने प्रदेश हो सकते हैं, माने इतने परमाणु हो सकते हैं, जैसे अभी अपने एक जीव के साथ अनंत परमाणुओं का बंध है उद्गलों का, एक एक कार्बन वर्गणा में अनंत परमाणु होते ही हैं, तो उद्गल के अनेक प्रदेश होते हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। और काल का एक ही प्रदेश होता है, इसलिए काल काय नहीं है। अब शंका आती है कि उद्गल का अकेला परमाणु क्या काय है, तो आचार्य कहते हैं ए पदे सो भी अणु नाना खंड परेश दो होती बहुदेशो व्यारा तेण काओ भणंत सब वर्ण। एक प्रदेश वाला परमाणु भी अनेक स्कंद रूप भेदों को प्राप्त करने में सक्षम होता है, इसलिए उसको उपचार से सर्वज्ञ भगवान ने काय स्वीकार किया है। उपचार से भले वो साक्षात काय नहीं है, लेकिन क्षमता होने के कारण, स्कंद बनने की क्षमता होने के कारण एक परमाणु को भी काय स्वीकार किया गया। फिर प्रदेश किसको कहते हैं, जावधियं आयासं अविभागी पुद्गलाणु वट्टध्वं तंकुपदे संजाणि सव्वाणुत्थान दाणर्हम। ये भी आपने अभी शंका की थी प्रदेश के बारे में, उसका भी जवाब यही था। इसमें आचार्य कह रहे हैं कि आकाश के जिस हिस्से को अविभागी पुद्गल का एक परमाणु रोके, ग्रहण कर ले, उसको प्रदेश जानो। और आकाश के उस प्रदेश में क्षमता कितनी है, सब परमाणुओं को स्थान देने की क्षमता उस एक प्रदेश में पाई जाती है। ये बात अलग है कि सब परमाणु उसमें स्थान ग्रहण नहीं करते, लेकिन उस प्रदेश में क्षमता जरूर है ग्रहण कराने की। अगर ग्रहण करें तो फिर वो एक प्रदेश आकाश का सब परमाणुओं को अपने में समाविष्ट करने में सक्षम होता है। इस प्रकार ये अजीव का वर्णन हुआ, अब आश्रवादिक का वर्णन इसके पश्चात किया जाएगा। जावाणी के ज्ञान से और
Got something?